دو دوسرے پیج تک پہنچ اور یہاں تک نیکسٹ پیج تک. ہاں لیں گے تو ہی چلے گا, نہیں چلے گا کوئی بات نہیں.
اوم شانتی. सच्ची स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो. साकार स्वरूप में सर्व संबंधों का अनुभव कराने वाले बाप दादा अपने स्नेही बच्चों प्रति बोले, आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी वा सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं. चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य है. स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है. फिर भी स्नेही तीन प्रकार के हैं. एक है स्नेह करने वाले, दूसरे है स्नेह निभाने वाले और तीसरे है स्नेह में समाये हुए. समाना अर्थात समान बनना. स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है. इसीलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि बाप ने साथ साथ और क्योंकि बाप के साथ साथ और कहां भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से चाहे प्रकृति के साधनों से, कहां भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं. स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है. स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय हर स्थिति हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है. अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है. उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है, सोचते भी है कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है. लेकिन यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है, इसीलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है. एक बल एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है. इसीलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपने तरफ आकर्षित कर लेती है. इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं. लगाव नहीं समझते लेकिन सहारा समझते हैं. इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले. दूसरे है स्नेह निभाने वाले. स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है. निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पांस देना, रिटर्न देना. स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना. तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है कभी नहीं होती है. फिर भी निभाने वाले समीप हैं, लेकिन समान नहीं है. निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुणा हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है. तीसरे जो स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः ही स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समय हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती है। तो स्नेही सभी है, लेकिन तीन प्रकार के हैं। अब अपने से पूछो, मैं कौन? अपने को तो जान सकते हैं ना। स्नेही है तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति इसमें नंबरवार वन बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है वही पाप समान बनता है। ऐसे स्नेह ऐसे समय हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा, बाप के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है, समाना सहज है। दूर होना मुश्किल है क्योंकि समय हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। ओम शांति।
आप सुनाओ, आप स्नेह के बारे में, आपको बाबा से स्नेह कैसे हुआ?
वो मैंने सुना।
और कुछ सुना?
बोलो बोलो।
ओम शांति। शरीर का नाम दीप्ति है। 5 साल से ज्ञान में चलती हूँ, लेकिन कुछ बोलने का, ये अकेले ज्ञान में चलती है इसलिए बहुत डर लगता है कि बोलूंगी नहीं बोलूंगी, क्योंकि घर से बंधन है। वैसे अब तक आने नहीं देते थे, लेकिन अब छुट्टी है, जब चाहे आ सकती हूँ, लेकिन थोड़ी टाइम के लिए। इसीलिए जो ध्यान में चली तो टीचर्स ट्रेनिंग भी की है, लेकिन किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है क्लास में या बोलने में, क्योंकि डर लगता था कि घर वालों को पता चल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तो कुछ बोलने का मुहावरा भी नहीं है, इसलिए बोल नहीं पाती हूँ। लेकिन बाबा से तो मतलब कि जब से ज्ञान मिला, मतलब कि मेरे पापा इतना प्यार करते थे कि ये कभी प्यार का अनुभव ही नहीं होता। अगर वो होते, वो नहीं थे तो बाबा मिले, अगर वो होते तो आज मैं ज्ञान में भी नहीं आती। तो उसके जाने के बाद ये मुझे एहसास ही नहीं है कि वो नहीं है, वो हर पल हर घड़ी, जैसे बाप कहते हैं कि मैं सदा आपके साथ हूँ, तो वैसा ही अनुभव होता है। तो जहाँ कहीं भी जाती हूँ, चाहे सेंटर में चाहे किसी भी जगह, तो बाप का साथ या स्नेह सभी जगह सभी सेंटर से बहुत मिलता है। मतलब कि मैं एक सेंटर से रिलेटेड नहीं हूँ, कई ज्यादा सेंटरों में जाती हूँ। जिस दीदी से पालना ली उस दीदी को भी बोला है कि मैं एक सेंटर में नहीं रह सकती हूँ, मैं तो बेहद में सेवा करना चाहती हूँ। माना दीदी को ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो फिर भी साथ देते हैं, चाहे आपकी जो भी इच्छा हो। तो वैसे मेरे पापा का मुझे ये फील नहीं होता है कि वो नहीं है, वो सदा मेरे साथ है जैसे बाप साथ है। तो मुझे बस और कुछ नहीं अवश्य। हाँ जी। हाँ वो नहीं है इसमें है बाप के साथ तीन प्रकार के स्नेह, एक है स्नेह करने वाले, दूसरे है स्नेह निभाने वाले और तीसरे है स्नेह में समाये हुए। मना ये तो मेरे लिए तो तीनों ही उसमें मैं ये डिसीजन नहीं ले सकती कि मैं कौन हूँ इसमें। और बताया है कि स्नेह करने वाले तो कभी कभी स्नेह करते हैं लेकिन करते करते भी टूट जाते हैं, कभी फिर जुड़ जाते हैं। हाँ क्योंकि जब घर में रहते हैं ना तो बंधन है तो बोलते रहते हैं, आप वहाँ घूमते रहते हो तो यहाँ अच्छा नहीं लगता, लोग बोलते रहते हैं कि आप अपनी बच्ची को अच्छी पालना नहीं दे रहे हो तो वो इसीलिए
आगे का रास्ता जानना है, ये पहला रास्ता होगा
तो उन लोगों को
पहला माइलस्टोन खत्म हुआ।
मतलब कि घर वालों को ब्रह्मा कुमारी के बारे में कुछ पता नहीं है और उन लोगों को जानना भी नहीं, उन लोगों को जानना भी नहीं है, देखना भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। लेकिन वैसे इसलिए मुझे उसको बहुत बताने का है, कुछ इच्छा नहीं हो रही है कि उसको जब इच्छा होगी तो आएंगे। उसी रीति से बाबा के घर में सेवा का चांस भी बहुत मिलता है। और एक बात है कि मैंने जिस दिन ज्ञान लिया उस दिन 24 जून का दिन था, तो सेंटर पे गई तो बहुत सब लोग खुश हुए कि ओह आज आप ज्ञान सुनने के लिए आए। लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि इसको इतनी खुशी क्यों हो रही है। लेकिन मैं मेरे पापा के साथ गई थी तो मेरे पापा ने बोला कि एक बार मना किया है तो फिर क्या तू जाएगी वहां, अभी नहीं जाना है। मैंने बोला लेकिन मुझे एक बार तो ये 7 दिन का कोर्स क्या है वो समझना ही है। तो फिर पापा मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करते, बोलते हैं अच्छा ठीक जैसा आपको लगे, लेकिन घर वालों को कुछ नहीं बोलना, मैं आपको वहां ले जाता हूँ। तो ज्ञान भी पापा ने ही दिलवाया, रोज ले जाते थे घर से। हम कह के निकलते थे कि गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, तो वापिस आते थे दोनों साथ में, तो उनको ये घर वालों को पता नहीं होता था कि 1 घंटे में कोर्स भी हो गया। तो घर वालों को किसी को पता नहीं था कि ये ज्ञान मैंने ले लिया है। तो फिर जब वो 24 जून था उस दिन, उसके बाद मैंने ज्ञान लिया, उसके तुरंत ही बाद मना 1 अप्रैल को ही पापा ने शरीर छोड़ा। तब जो लौकिक क्रियाएं होती हैं उसमें सब होता है कि गीता जी का पाठ पढ़ो, तो मेरे उस पढ़ते थे लेकिन कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि घर वालों को पसंद नहीं था मैं ब्रह्मा कुमारी में जाऊं। लेकिन ये ज्ञान सुना था तो ऐसे सोच चलती थी कि ये बाबा कहते हैं वो ठीक है, ये इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर वो 1 अप्रैल मना सब लोग ऐसा समझते हैं अप्रैल फुल, और उसी दिन मैं यहाँ मेरे पापा के साथ नहीं थी, उस दिन मैं हरिद्वार में थी। तो जब मैं मुझे छोड़ने आए मेरे पापा 30 तारीख को, 31 तारीख को मैं हरिद्वार में पहुंची और 1 तारीख को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वैसे वो नॉर्मल ही थे लेकिन वो जो उसके साथ हुआ वो मैं कह नहीं सकती क्योंकि अगर मैं बोलेगी तो मेरे आंख से आंसू निकल जाएंगे, और जो ड्रामा में होना है वो तो हो गया। उस रीति से जब ज्ञान मिला था तो मन डिस्टर्ब नहीं हुआ, संभल गई। तो घर वालों को ऐसा लगा कि ये बहुत उसको लगा है इसलिए अब वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती है। लेकिन मुझे तो बाबा का ज्ञान अच्छा लगता था इसलिए मुझे अपने खुद से ही समझ आ गया कि मैं अगर आगे बढ़ूंगी तो ये ब्रह्मा कुमारी से ही और सभी दीदियों से भी अच्छी पालना मिली। और दूसरी बात 25/8 जो दादी जी का दिन है वो मेरा लौकिक बर्थडे। तो उस दिन मैंने युक्ति से सबको यहाँ लेके आई थी। मैंने बोला कि मैं कुछ सहयोग देना चाहती हूँ मेरे जन्मदिन के अवसर पर, तो आप सब लोग मेरे साथ आओ। तो उस दिन मैं सबको यहाँ लेके आई शांतिवन में। तभी बहुत हमारा तो यहाँ दादी का दिन होता है तो बहुत रश होता है, तो जानकी दादी के हाथ में देने के लिए बोला था। तो भाई लोग ने बोला ठीक है जैसे तेरी इच्छा। तो यहाँ आए तो सही, लेकिन दादी जी से मिलने का दिन उस दिन तो बहुत रश होता है। तो प्रवीणा बहन ने बोला आपने ये कैसा संकल्प ले लिया है। मैंने बोला जी ये संकल्प तो नहीं है, हो सकता है तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। तो बोले ठीक है, उसके साथ में कोई भाई रहता है ना दादी के साथ में, उनसे आप बात करना, वो अगर टाइम मिलेगा तो 5 मिनट में आपको मिलवा देंगे। मैंने बोला ठीक है। तो वो भाई से बात की तो दादी ने शायद सुन लिया होगा। तो दादी ने बोला जब निकलते थे तो दादी ने बोला सब लोग आ जाओ। तो वो भाई ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि आप एक ही आना, अपने घर वालों को दूर ही रखना। तो दादी गेट के पास मना हो, हाँ दरवाजा है डायमंड हॉल के बाहर निकलने के, तो वहां दादी आके बोली सब लोग आ जाओ एक नहीं। तो फिर सबको टोली दी, दृष्टि दी, लेकिन हमारे घर वाले को ये पता नहीं कि हम पैर नहीं छूते हैं, तो सब लोग ने दादी के पैर पीछे। तो उसके बाद मुझे भी डांट मिली कि आपको पहले बताना चाहिए कि आपके वहाँ पैर नहीं छूते। लेकिन मैंने बोला कि मुझे पहले बोला गया था कि आपके घर वालों को अंदर नहीं अपने देना है, तो ये तो दादी ने बोला था। तो मतलब कि जो हम सोचते हैं बाबा उसमें बहुत हेल्प करता है। तो दादी से इतनी नजदीक मुलाकात हुई तो, लेकिन वो लोग तो वो भक्ति मार्ग वाले तो वो कुछ नहीं समझते। तो उस रीति से यहाँ भी ऊपर फिर लेके आई दिखाए, लेकिन उनको यहाँ अच्छा नहीं लगा। तो वो एक दिन रहे यहाँ, फिर दूसरे दिन वहाँ होटल में रहने चले गए, क्योंकि यहाँ तो उसको वातावरण खान पान कुछ नहीं अच्छा लगा। तो फिर मैं फोर्स नहीं करती हूँ उनको, जो करना है वो लोग वो करेंगे, अभी ड्रामा में नहीं है तो नहीं। अच्छा ओम शांति।
बैकअप फर्स्ट, हाँ बैकअप हो। ओम शांति। तो मैंने आज प्यार के बारे में कहा, तीन प्रकार के बच्चे हैं। पहले वो जो प्यार करने वाले, दूसरे प्यार निभाने वाले, और तीसरे प्यार में समाने वाले। तो तीन अवस्थाएं हैं। पहली जो अवस्था है उसमें प्यार करना पड़ता है, और उसमें कभी प्यार टूटता भी है। किधर जाता है? साधन और व्यक्तियों में जाता है। दूसरा जो प्यार है वो बहुत ऊंची स्टेज है, फिर भी वो जो निभाने वाले हैं वो बाप से प्यार निभाते हैं, और बाप से प्यार के रिटर्न में उनको पदम गुना मदद भी मिलती है। और तीसरे जो है वो निरंतर प्यार में समाये हुए है, वहां पर कोई मुश्किल का अनुभव नहीं है। उन्हें ये अनुभव होता है कि बाप ही संसार है। तो बाबा ने पूछा इसमें से हम कौन है, तो कौन है फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कि थर्ड? कि एक है फर्स्ट फोर्थ। तो हर आत्मा में एक प्यास है प्यार की। परमात्मा प्रेम ऐसी चीज है कि इस संसार में ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है कि जिसके हृदय में परमात्मा प्रेम नहीं है। परंतु वह प्रेम वो किसी और चीजों में ढूंढता है, चाहे अज्ञानी भी हो। बाबा कहते हैं उसके भी मुख से निकलता है, नास्तिक के मुख से भी, कि हे भगवान। तो प्यार ऐसी चीज है, हर आत्मा प्रेम की प्यासी है, परंतु उसकी जो दिशा है इस प्रेम को ढूंढने की वो गलत है। कोई इस प्रेम को देह में ढूंढता है, कोई धन में ढूंढता है, कोई पोजीशन में ढूंढता है, कोई और किसी चीज में ढूंढता है, परंतु उसकी प्यास वास्तविक में वास्तविकता यह है कि उसकी प्यास उस प्यार के लिए है। वो उस देह के मिलन में उस प्रेम को ढूंढता है, परंतु उसे वो करने के बाद पता चलता है कि देह तो मिल गया परंतु प्यास फिर भी पूर्ण नहीं हुई है, इसके लिए अधूरा ही रह जाता है, वो अतृप्त रह जाती है आत्मा। तो ये परमात्मा प्यार ऐसा है, जब तक आत्मा इस प्यार से नहीं भर जाती तब तक उसे संतुष्टता हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अनंत है, इस संसार की वस्तुएं जो अंत वाली है, अंत वाली चीजें अनंत को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। इन्फिनाइट फाइनाइट कैन नेवर सेटिस्फाई द इनफाइनाइट। जो ये संसार की हद की चीजें वो कभी बेहद को संतुष्ट कभी नहीं कर सकती। इसके लिए आत्मा की जो मुख्य प्यास है वो प्यार की है। जब तक आप उसे परमात्मा प्रेम से नहीं भरोगे तब तक वो संतुष्टता का अनुभव हो ही नहीं सकता। कल का वरदान था ना, जहाँ संतुष्टता है वहां पर प्रसन्नता है, जहाँ प्रसन्नता है वहां पर प्रशंसा है। तो प्रसन्नता का आधार है संतुष्टता, और संतुष्टता का आधार है परमात्मा प्रेम। पर ये प्रेम इतनी सस्ती चीज नहीं है कि सबको मिल जाए, इसके लिए कुछ करना होता है। जैसे एक नदी निकल पड़ी सागर की ओर, उसकी प्यास उसकी अभिप्सा है सागर से मिलने की। सागर से मिलने की इस चाह में उस नदी ने न जाने कितने घाट तोड़ दिए। इस सागर से मिलने की चाह ने उसने न जाने कितने ही जो कुछ बीच में आया, कितने पर्वत है पर्वतों को भी तोड़ दिया इसने। ऐसी इसकी चाह है इस नदी की। परंतु ये नदी चलते चलते बहते बहते एक मरुस्थल पर आकर रुक गई। अब उसने ये सोचा कि जैसे मैंने खेत और खलियानों को उजाड़ दिया, घाटों को तोड़ दिया, वैसे इस मरुस्थल को भी मैं तोड़ दूंगी, इस रेगिस्तान को भी पार कर सागर में मिल जाऊंगी। परंतु मरुस्थल से वो झगड़ती रही। दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजर गए, परंतु उस रेती को वो पार नहीं कर पाई क्योंकि रेत उसको पीने लगा। तो क्या किया जाए अभी बताओ। नदी को पहुंचना है सागर तक, पर बीच में रेत है, मरुस्थल है, रेगिस्तान है। अब इस रेगिस्तान को क्या कैसे वो पार करे। तो रेत ने कहा कि तुम उड़ जाओ, हवा पर सवार हो जाओ, भाप बन जाओ। उसने नहीं सुनी। समुद्र की ने रेत ने कहा कि तुम्हें अगर मुझसे मिलना है तो स्वयं को मिटाना होगा। नदी ने कहा मैं मिटना नहीं चाहती हूं। तो रेत ने कहा कि जब तक तुम नहीं मिटोगी, जब तक तुम स्वयं को भाप नहीं बना दोगी और आकाश में नहीं चले जाओगी और फिर नीचे नहीं आओगी, मुझसे नहीं मिल सकती। तो जब तक प्रेम में स्वयं को नहीं मिटाया जाता, स्वयं के अहंकार को नहीं मिटाया जाता है, बूंद या नदी, वो झरना नदी से नहीं मिल सकता और नदी उस सागर से नहीं मिल सकती। तो प्रेम की अनिवार्य शर्त है स्वयं के अहम को मिटाना। जब तक हमारा अस्तित्व मैं ना रह जाए, वो हो जाए, सब कुछ उसका ना हो जाए, एक ही संसार। तीसरी कैटेगरी है पाप में समाने वाले। समाने वालों का लक्ष्य है, उनको अगर प्रेम में मेहनत लग रही है तो समझ लेना वो प्रेम नहीं है। अगर हमारे पुरुषार्थ में हमको मेहनत लग रही है तो समझ लेना वो पुरुषार्थ नहीं है। बाबा जाते हैं मेहनत मुख। जैसे अमृत वेले 4 और 4:30 के बीच में हमको कोई कहे कि आपको बात नहीं करनी है, हम तो पहले ही बात नहीं कर रहे। क्या कोई पुरुषार्थ कर रहे चुप रहने का, मौन रहने का? नहीं कर रहे, वो स्वतः ही हो रहा है, इतना सहज हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो परिणति है, किसी चीज का परिणाम है। अवस्था इतनी ऊंची है कि वो बात करना तो इच्छा ही नहीं है बात करने की, तो वो रिजल्ट है। उसी तरह पुरुषार्थ का भी आधार प्रेम है। अगर प्रेम इतना बहुत ज्यादा है तो उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो निरंतर प्रेम है, उसमें गिनती की आवश्यकता नहीं। जैसे उस साधु की बात, उसने माला को छोड़ दिया। जहां प्रेम है वहां पर गिनती कैसी। लैला और मजनू का प्रेम बाप भी याद करते हैं। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हुए, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, अब ये इतने हैं भारत भर में। देखो तो ऐसी जोड़ियां इतनी सारी है, अब इनमें से किसी की भी शादी नहीं हुई अगर देखा जाए तो, जितने ये प्रेमी हैं संसार के, और भगवान उनको याद करता है। अभी इनका प्रेम ऐसा है, वो दैहिक है परंतु विकार नहीं है उसमें।
सब कुमार कुमारी
कुछ तो हुआ यहाँ तक कि, तो लैला मजनू में तो उसकी तो शादी भी हो गई किसी और के साथ। परंतु इनका प्रेम इतना ऊंचा प्रेम है कि उस प्रेम में मेहनत नहीं है। जैसे परसों की मुरली में आया था ना, वो लैला मजनू जैसे वो बैठ के थोड़ी ना प्रेम करते, वो तो चलते फिरते कर्म करते हुए भी उनका प्रेम चालू है, वो उसी की याद चालू है। जैसे लैला और मजनू में दिखाया है, वो बैठे हुए हैं, बीच में से नमाज पढ़ रहा है या बीच में से बारात चली गई। अब बारात का उनको पता ही नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं, देखने की इच्छा नहीं, कौन दूल्हा है कौन दुल्हन है, क्या बाजे बज रहे, रोको इसको, हम तो एक दूसरे में खोए हुए हैं, और हम अगर बाबा के कमरे में बैठे और जोर से आवाज हो रहा हो तो डिस्टर्ब क्यों? जब खोए रहते हैं तो कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करती है, ना कोई किसी का मोबाइल डिस्टर्ब करता है, ना कोई आवाज डिस्टर्ब करती है। तो प्रेम ऐसी चीज है, परमात्मा प्रेम हमारा इतना, जितना हम प्रेम को बढ़ाएंगे सारा पुरुषार्थ तो सहज हो जाएगा। तो स्वयं को मिटाना पड़ेगा, उसकी शर्त ही वो है कि प्रेम में मैं नहीं रहता, वो उसके साथ मिल जाता है। जो भक्ति में गायन है, ज्योति ज्योत समाने वाली बात, वो गायन हमारा ही है। आत्मा का अस्तित्व अलग, परमात्मा का अस्तित्व अलग, परंतु प्रेम तो एक हो जाता है। जैसे मराठी में कहते, तुका मने होती तुझी माची एक ज्योति, तुझी और माची, तेरी और मेरी ज्योति जैसे एक हो गई, वो दो नहीं रहे फिर, अद्वैत, द्वैत नहीं है अब, अद्वैत है, एक है जैसे। तो ये जो प्रेम की अवस्था है, जैसे बाइबल में भी कहा है, जो स्वयं को बचाता है वो खोता है, और जो स्वयं को खो देता है वही वास्तव में स्वयं को बचाता है। तो स्वयं को उस सागर में खो देना, अपने आप को रोकना नहीं, क्योंकि नदी अगर ये सोचे कि मैं नदी ही बनना चाहती हूँ, मैं अपनी सीमाएं नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं अपना रूप रंग आकार वही रखना चाहती हूँ, तो वो कभी भी सागर में नहीं समा सकेगी। सागर में उसको समाना है तो सारे किनारे उसको छोड़ने पड़ेंगे, वो उसके साथ एक हो जाना पड़ेगा। जो उसका अस्तित्व है वही इसका अस्तित्व रह जाएगा। जैसा वो स्नेह का सागर है, हमें भी अपने स्नेह का सागर बनना पड़ेगा। फिर हम किसी एक व्यक्ति से मोह नहीं रख सकते, फिर हमारा मोह सार्वजनिक हो जाए। फिर मोह से जीतने की विधि क्या है? जैसे एक से मोह रखा है ना, सबसे मोह रखना चालू करो। मोह को थोड़ो नहीं, मोह से नहीं छूटो, जैसे इससे रखा सबसे मोह रखो, मोह को सार्वजनिक बना दो तो वो प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। तो पहले है प्रेम करने वाले, तो वो जो करने वाले उनका प्रेम कभी करते कभी नहीं भी करते। जब साधन आ जाते तो साधनों की तरफ बुद्धि जाती, कोई व्यक्ति आ जाता तो व्यक्ति की तरफ बुद्धि चली जाती है, या स्थान के आधार पर प्रेम। जब मधुबन में है तो बाबा से प्यार में आंसू बहते हैं, और जब यहां से जाते हैं तो खलास तो किसी और के याद में आंसू बहते हैं। स्थान के आधार से प्रेम, व्यक्ति से प्रेम, वस्तुओं से प्रेम। तो ये जो प्रेम है, बाबा ने इसको फर्स्ट कैटेगरी में डाला है, जो करने वाले। दूसरे जो है वो भाव से प्रेम निभाने वाले, वो थोड़े बहुत बहुत ऊंचे है, वो फिर भी वहां तक भी पहुंच गए तो बहुत ऊंची बात है। जिनका प्रेम ऐसा है कि वो प्रेम को निभाते हैं, और उस रिटर्न में बाप उन्हें पदन गुना प्यार, मदद, हिम्मत सब कुछ देता है, परंतु निभाने वाले। और तीसरी कैटेगरी तो है, वो कभी जुदा ही नहीं होते, वो सदैव उससे मिले हुए है, सदैव उसमें समाये हुए है। जैसे मीरा का दिखाते हैं ना, वो सदैव कृष्ण की याद में है, उसे संसार से कोई लेना देना नहीं, भोजन भवन भलो नहीं लागे, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है संसार। वहां के उसके आसपास के लोग उसकी स्थिति को समझ नहीं पाते, अगर उसे समझना है तो बहुत प्रकांड ज्ञानी पंडितों को बुलाना पड़ेगा, सन्यासियों को बुलाना पड़ेगा, वो समझेंगे कि जिन वासनाओं को छूट, जिससे छूटने के लिए हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं, वो इसने सहज छोड़ दिया सारा, और वो निभा रहे, वो फीलिंग नहीं, वो तो इतनी ऊंची अवस्था है कि जैसे वो उसमें निरंतर उसी में समाई हुई है, उसे दूसरा कोई संकल्प ही नहीं है, वही ही संसार है। जैसे मछली के लिए पानी, सागर ही संसार है। उसको कहो कि सागर को, सागर का वर्णन करो, सागर क्या है, उसके पास शब्द नहीं है, बस ये है, ये जो दिख रहा है ये है, और यही मैं हूं, अगर मैं इससे बाहर हूं तो मैं नहीं हूं। बाप ही सागर है, इससे सागर से अगर बाहर निकालो तो हमारा अस्तित्व नहीं है। तो हमारा प्यार ऐसा हो कि उसके बिना हम ना रह सके। बाबा कहते हैं ना, याद करने की कोशिश ना करो, याद बिना ना रह सको, ये है परिपूर्ण प्रेम, संपूर्ण प्रेम। प्रेम कोई क्रिया भी नहीं है, प्रेम अर्थात समर्पण, प्रेम अर्थात योग। तो योग भी कोई क्रिया नहीं है जो बाबा के कमरे में बैठकर की जाए, वो एक अवस्था है। समर्पण कोई क्रिया नहीं है कि जिसका फंक्शन हो और वो हो गई, वो एक अवस्था है। तो निरंतर समर्पण का भाव, निरंतर योग की स्थिति और निरंतर प्रेम, ये एक ही चीज है तीनों, कि निरंतर प्रेममय अवस्था है। हम उसमें समाये है, वो हम में समाया हुआ है, उसके बिना हम नहीं, हमारे बिना वो नहीं। तो ये जब बढ़ाओगे, ईश्वर है अनुराग, विषय विराग, तो विषय जो विराग है वो स्वतः हो जाएगा। अगर ईश्वर है अनुराग हो गया तो हमें जितना प्यार है बाबा से बढ़ाना है। अब बाबा से प्यार कैसे बढ़े, ये एक दूसरा विषय है। कैसे बढ़ाएंगे प्रेम को, मंजू मैम, भगवान से प्रेम को कैसे बढ़ाए, क्या किया जाए कि जिससे हमारा प्रेम अभी जितना है उससे दोगुना हो जाए? क्योंकि प्रेम अगर बढ़ गया तो संसार आप ही छूट जाएगा, क्योंकि वो छोटा लड्डू है। हमको बड़ा लड्डू अगर मिल जाए तो वो तो त्याग हो जाएगा उसका, वो नहीं चाहिए फिर हमको। बहुत बड़ा खजाना मिल गया तो छोटा खजाने का हम क्या करें? ये संसार तो क्या है, बेहद का डस्टबिन, रिफ्यूज बिन। कल कहा ना, कीचड़े का डिब्बा है बेहद का। वो अच्छी चीज मिल गई तो हम बुरी चीज को क्यों पकड़ेंगे, वो स्वतः छूट जाएगी हाथ से। तो हम क्या ऐसा करें कि जिससे हमारा और उसका प्रेम बहुत बढ़ जाए, बोलो। श्रीमत को फॉलो करना वो सब तो है, और क्या करे कि जिससे प्रैक्टिकल में ऐसा क्या करे कि हमको खुद ऐसा अनुभव हो कि कल जो हमारा प्यार था आज उससे कई गुना अधिक है या थोड़ा सा बढ़ गया है।
भाप बनना पड़ेगा,
स्वयं को मिटाना पड़ेगा। ये जो मैं है, इस मैं का अतिक्रमण करना पड़ेगा। ये मैं ही तो रोक के रखा है हमको, तो वो भी कैसे करे? पर जिससे प्यार बढ़ जाए, मतलब ऐसी वो कौन सी बातें याद करे कि जिससे नैनों से अश्रुधारा बह जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। जिससे बहुत प्यार है, जैसे बहन जी ने कहा, अगर मैं बात सुना दूंगी तो आंसू बह जाएंगे, तो क्या है वो?
आंसू तो हमारे बाहर ही
है। सबसे पहला है उसके उपकारों को याद करना, ये है फर्स्ट स्टेप। उसने हमारे लिए क्या क्या किया, उससे हमें क्या क्या मिला। अगर वो हमारे जीवन में ना होता तो हम कहाँ होते? अगर वो हमें ना मिलता तो हमारी क्या गति होती? कहाँ कीचड़े के डब्बे में पड़े होते? वो सोचना कि उसके आने से हमारे जीवन में क्या हो गया, ये जो मरुस्थल था वो क्या, कैसे भाग भाग हो गया जीवन, वो कैसे हुआ? अगर वो ना होता तो हम रेगिस्तान होते, वो है इसके लिए हम गुलजार है। तो उसने हमारे लिए क्या क्या किया, कौन सी वो घड़ी थी जिस समय वो आकर हमसे मिला, उसी दम तेरा वो आना न भूल पाएंगे। कौन सी वो घड़ी थी कि बस अभी आत्महत्या करने ही जा रहे थे, बस खड़े थे कगार पर और गिरने ही वाले थे, उसने आके रोका। तो उसने हमारे लिए क्या क्या किया, उसके क्या क्या उपकार है, उससे हम कैसे मिले, क्या वो चीजें उसने हमें दी है, क्या क्या प्राप्तियां हुई है, वो सारी चीजों का सिमरन, चिंतन, मनन, मंथन, लिखना, रिवाइज करना, योग में भी उसको याद करना, तो उसके लिए प्यार बढ़ेगा। एक तो भगवान के लिए प्यार, एक ब्राह्मण परिवार के लिए प्यार, एक यज्ञ के लिए प्यार। कल की मुरली में था ना, इस यज्ञ ने तुमको क्या क्या दिया, तो कितना कितनी प्यार से तुमको सेवा करनी चाहिए, हड्डियां दे देनी चाहिए ये इस यज्ञ के लिए। ये यज्ञ ने हमारे लिए क्या क्या किया, हम इस यज्ञ में अगर ना आते तो हमारा स्थान क्या होता, हमारी क्या हस्ती होती, क्या अस्तित्व होता, कुछ भी नहीं होते हम। दुर्गति में तो थे ही, और ये अधोगति हो जाती। तो हमें अगर प्यार को बढ़ाना है तो फर्स्ट स्टेप है उसके उपकार याद करना, उसकी दी हुई प्राप्तियों को याद करना, एक ही है। दूसरा और क्या करेंगे कि जिससे प्यार बढ़ जाए?
उसके साथ कर्तव्य में समर्पण,
उसके कर्तव्य में सहयोगी हो जाना, या उसके जो कर्तव्य हमारे कर्तव्य समा जाओ। और अगली संडे की मुरलियों में तीन प्रकार के पुरुषार्थी गिनाए हैं बाबा ने। फर्स्ट जो है वो पुरुषार्थी है, कभी तीव्र कभी कुछ। दूसरी कैटेगरी वो जीवन मुक्त स्थिति में रहते, तीसरी कैटेगरी वो है जो देह में रहते विदेही स्थिति का सदैव अनुभव करते हैं। तो जितना ज्यादा हम अशरीरी बनेंगे उतना उससे प्यार बढ़ेगा। फर्स्ट स्टेप है उसके याद, उसके उपकारों को याद करना, और सेकंड स्टेप है कि इस देह से अपने आप को अलग समझना। जैसे देवेंद्र भाई कहते हैं, जैसे ये टेबल है और ये मैं हूं, ये देह है और ये मैं हूं, ऐसे दो अलग अलग चीजें अनुभव हो, हम दोनों के बीच में खाई हो एक बहुत बड़ी, वो देह उधर और मैं इधर, चलते फिरते ये अनुभव हो कि ये मैं नहीं ये मैं। जैसे गीला नारियल और सूखा नारियल, गीला नारियल जो होता है वो एक मिला हुआ है, तो हमें बनना है सूखा नारियल। ऐसे ऐसे हिलाओ तो वो अलग हो गया, वो अलग हो गया, वो जो उसका ऊपर का है वो अलग हो गया है, उसको ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये आत्मा अलग और ये देह अलग। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है विदेही अवस्था का, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अशरीरी अवस्था का, क्योंकि जैसे ही आत्मा शरीर से डिटैच होती है उसकी वो कहां जाएगी, याद किसकी आएगी, हर वो चीज की याद आएगी जो आत्मा से जुड़ी हुई है, परम धाम की याद आएगी, बाप की याद आएगी। जैसे देहाभिमान में आते हैं हर वो चीज की याद आती है जो देह से जुड़ी हुई है, देह की वासनाएं, देह की इच्छाएं, देह के विकार, देह की वासना तृप्ति, संबंध, धर्म, प्राप्तियां, देह से संबंधित सारी बातें स्वतः ही याद आती है, करनी नहीं पड़ती है। जैसे देह को समझने से देह की सर्व बातें याद आती है, वैसे आत्मा समझने से आत्मा से संबंधित सारी बातें आती है। फिर मैं ब्राह्मण हूं, फिर मैं शूद्र पहले था अभी ब्राह्मण हूं, देवता बनने वाला हूं, ये सारी बातें याद आती है। बाबा ने कभी कहा है अगर इतना भी याद रहे कि मैं संगम योगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण हूं तो अहो सौभाग्य, कितनी मुरलियां चली है इसके ऊपर। तो जैसे हम स्वयं को देह से अलग करते हैं स्वतः ही परमात्मा प्यार भरते जाता है, परमात्मा प्यार का गहन अनुभव होते जाता है। और कोई देहभान में है उसमें परमात्मा प्यार का अनुभव नहीं हो सकता है, वो विकार के ही संकल्प आएंगे, चलो विकार को छोड़ दिया तो व्यर्थ आएगा, व्यर्थ तो विकार तो छूट गया सूल रूप से, परंतु जो व्यर्थ है, जो निगेटिव है, जो नकारात्मक भाव भावना, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा, ये सारे भाव वहां पैदा होते रहते हैं। आत्मा को कभी परमात्मा सुख का अनुभव नहीं होता है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात देह से रहित, इंद्रियों से रहित जो सुख की प्राप्ति होती है वह अतीन्द्रिय सुख है, वो केवल अशरीरी अवस्था में ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए लक्ष्य रखना है योग में भी और सारी दिनचर्या में भी कि बीच बीच में इस शरीर से अलग हो जाओ, डेड साइलेंस का अनुभव, ये देह मैं नहीं हूं, डिटैच्ड, मैं अलग ये अलग, ऐसा अनुभव, ऐसा गहराई से अनुभव करना है, केवल सुनने पढ़ने जानने मात्र नहीं, अनुभव अनुभव करना, ऐसा अनुभव हो कि मैं अभी स्तन से निकल कर जा रही हूं। इसके लिए भी बहुत सारी चीजें करती किया जा सकते हैं, जैसे दादियों ने अभ्यास किया, अपनी देह को जलते हुए देखो, अपनी देह को मरते हुए देखो, खत्म हो गई है देह, मैं नहीं रहा इस देह में, मैं हूं ही नहीं। तो सबसे बड़ा अभ्यास है जो ब्रह्मा ने भी किया सबसे ज्यादा, सब जगह लिखा मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, जो दिख रहा है ये भी आत्मा, उसमें भी एक अभ्यास आ जाता है आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, जो दिख रहा है ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। तो योग में शरीर से अलग होने का अभ्यास, और जब कर्म में है तब स्वयं को आत्मा समझना, और धीरे धीरे कुछ एक सेकंड भी अगर किसी को आत्मा समझे तो बहुत है, क्योंकि बाबा ने कहा जब तुम किसी को आत्मा देखते हो तो करंट देते हो उसको, और करंट आती भी है। तो हमें ये दो अभ्यास करने हैं कि बाबा के उपकारों को याद करते रहना बीच बीच में या लिखना, और दूसरा इस देह से अलग होना। तो हमारी वो अवस्था होगी जो बाबा थर्ड स्टेप कहते हैं कि प्यार में समाये हुए रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।